जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना हरी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव हरे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे राधा रस हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय पाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री श्री राधारा श्री हरि ललित विशाखा जी की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की जय श्री निताय गौर सुंदर की जय श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय श्री वक्रेश्वर पंडित की जय निताय गौर प्रेम नंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्। ओम ज्ञानति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 53। एतत् रूपम् अनुध्येयम् आत्मा शुद्धिम् अभीप्सताम् यद् भक्तियोग अभयद स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम् ఏతద్రూపమనుధ్యేయం ఆత్మశుద్ధిమభిప్సతాం యద్భక్తియోగో అభయద స్వధర్మానుతిష్ఠతాం ఏతద్రూపమనుధ్యేయం ఆత్మశుద్ధిమభిప్సతాం యద్భక్తియోగోభయద స్వధర్మానుతిష్ఠతాం. ఆత్మశుద్ధిమభిప్సతాం యద్భక్తియోగోభయద ఓకే, మాతాయే బోలేంగి. యః రూపం రూప అనుధ్యేయం ధ్యాన కర్నా చాహియే ఆత్మ స్వ శుద్ధిం శుద్ధి అభిప్సతాం ఇచ్ఛా రఖనే వాలో కా యత్ జో భక్తి యోగః భక్తి అభయద నిర్భయ కరాని వాలి స్వధర్మం అప్నే వృత్తిపర కార్యకో అనుతిష్ఠతాం కర్ణే మే. అనువాద్ ఏవం తాత్పర్య కృష్ణ కృపా శ్రీమూర్తి ఎస్సీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్జీకే ద్వారా. हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए. जो अपने वर्णानुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में है और निर्भय होना चाहते हैं उन्हें इस भक्ति योग का अनुसरण करना चाहिए. तात्पर्य कहा गया है कि भगवान का दिव्य नाम स्वरूप लीलाएं तथा उनके संगी जनों को कोरी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता, अतः इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति करनी होती है जिससे भगवान के दर्शन हो सके. किंतु यहां पर यह बताया गया है कि जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं उनकी इंद्रियां भौतिक कल्मशों से पवित्र हो जाती है और वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस युग में सामान्य लोगों के बीच ध्यान शब्द लोकप्रिय है, किंतु वे उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि योगी जन भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 13 अध्याय 1 नंबर श्लोक। यही योगियों का वास्तविक कार्य है। अतः शिवजी उपदेश देते हैं कि जो वास्तव में शुद्ध होना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार के ध्यान में या योग में लगना चाहिए, जिससे न केवल अंतकरण में भगवान का दर्शन किया जा सकता है, वरन अपने समक्ष उनका दर्शन हो सकता है और वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में उनका पार्षद बना जा सकता है। स्वधर्मम यथा स्वधर्म अनुतिष्ठताम में यह शब्द सूचित करता है कि यदि जीवन में किसी तरह की सुरक्षा चाहिए तो वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ भक्ति योग ग्रहण करना चाहिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्म को करने या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी का कर्तव्य पूरा कर लेने से ही वे निर्भय हो सकते हैं या उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किंतु वस्तुतः जब तक इन सारे कार्यों को भक्ति योग के साथ संपन्न नहीं किया जाता तब तक कोई निर्भय नहीं हो सकता। भगवद गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि के वर्णन मिलते हैं, किंतु जब तक भक्ति योग तक नहीं पहुंचा जाता अन्य सारे योग जीवन सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दूसरे शब्दों में भक्ति योग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के मध्य इस जगत में मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में वार्ता है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है। उस वार्ता में रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रसंग तो उठाया, भगवान चैतन्य ने इंगित किया कि वर्णाश्रम धर्म केवल बाह्य है, ये हो बाह्य। अकेले वर्णाश्रम धर्म से मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है। अंत में रामानंद राय ने भक्ति योग का उल्लेख किया, स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, भागवत 10:14-3। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, यदि वह भक्ति योग करता है तो जिसका शुभारंभ भक्तों के मुख से भगवान के दिव्य संदेश को सुनने श्रुतिगताम से होता है, तो वह क्रमशः अजेय ईश्वर को जीत लेता है। ईश्वर अजेय है, किंतु जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वाणी को विनय पूर्वक सुनता है वह अजेय को जीत लेता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करना चाहिए अपितु भक्ति योग में भी लगना चाहिए, इससे भक्त अजेय भगवान को जीत सकेगा और इस शरीर को त्यागने के बाद उनका पार्षद बनेगा। तो बड़ा लंबा और सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में वैष्णवानाम यथाशंभु भगवान शिव के इन वचनों को श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं और उसी चर्चा को, संवाद को श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सुनना यह जीवन का परम चरम लक्ष्य है। आप सभी वैष्णव प्रभुपाद जी की कृपा से इस बात को जानते हैं, समझते हैं। और विशेष रूप में वेदों में अनेक प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं जीव की क्रमशः उन्नति के लिए, लेकिन भगवद गीता के अनुसार सुसुखम कर्तुरव्ययम्, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है यही परम सुखकारी और अव्यय मार्ग है। श्रीमद् भागवतम भगवान के स्वरूप को, भगवान की लीला को, उनके ऐश्वर्य को, उनके स्वभाव को, तत्व को सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है। जो भी व्यक्ति थोड़ा भी श्रीमद् भागवतम सुनता है, भक्ति रूपब्धते पुंसा, उनके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। और श्रीमद् भागवतम में महाजनों के, महान वैष्णवों के उद्गार दिए गए हैं। ये रसमय ग्रंथ है और आप सभी वैष्णवों के बीच भगवान शिव जो वैष्णवों के गुरु माने जाते हैं उनके वचनों को समझना है। श्रील प्रभुपाद जी ने सुष्ठु रूप से बहुत अच्छी तरीके से तात्पर्य में इस श्लोक का पूर्ण संदेश हमें प्रदान किया है और हम जैसे भक्तों का कुछ बोलना उस पर, कालिदास की पंक्ति याद आती है कि तितीर्षि दुस्तरम उडुपे नास्मि सागरम, एक छोटी सी नाव जैसी बुद्धि के द्वारा हम भाव सागर को, जो संसार सागर को पार करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव आचार्यों के टीकाओं से, वर्तमान प्रेजेंट गुरुजनों के मुख से सुने हुए वचनों से और विशेष रूप में प्रभुपाद जी के दिए गए तात्पर्यों से हमारे सामने इस श्लोक का भावार्थ स्वतः प्रकट होता है। अगर हम सच्चे हृदय से, श्रद्धा से सुनते हैं तब, नहीं तो भागवत के श्लोकों का अर्थ आस्वादन करना, जो साधु संघ का सार रूप गोस्वामी बताए हैं, हमारी संकुचित या विषयासक्त बुद्धि उसे ठीक से ग्रहण नहीं कर पाती जब तक हम वैष्णव आचार्यों की शरणागति न ले। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मानित प्रमुख आचार्य भागवत के टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत की टीका को लिखते हैं, तभी वो कहते हैं, क्वाहम मंदमति क्वेदम शीरवारिधे, कहां मेरे जैसा मंद बुद्धि और कहां शीर सागर का मंथन। आप सभी को ज्ञात है कि शीर समुद्र में मंथन के समय मंदराचल को देवताओं के द्वारा, अंततः भगवान विष्णु के द्वारा लाया गया था, लेकिन समुद्र की, शीर सागर की इतनी गहराई थी कि पूरा मंदर, जिसकी ऊंचाई चौड़ाई भागवत कहता है कि 1,00,000 योजन थी, वह भी डूब गया। तो भगवान कूर्म रूप में प्रकट हुए तो उस शीर समुद्र की गहराई को नापना असंभव है ऐसे बाह्य दृष्टिकोण से। तो ये भागवत तो रसार्णव है, रस ज्ञान का समुद्र है, प्रेम भक्ति का। अब सामान्य सागर की लंबाई चौड़ाई गहराई मापना भी मुश्किल है, तब ये भागवत तो अनंत रस समुद्र है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि किम तत्र परमाणु वही यत्र मंजति मंदर, तब मेरे जैसा शुद्र बुद्धि अल्प शुद्र जीव परमाणु कैसे इसका मंथन कर सकता है। यत्र मज्जति, इसमें तो बड़े बड़े मंदर डूब जाते हैं। बड़े बड़े मंदर मतलब सुखदेव, नारद, व्यास, ये बड़े बड़े मंदर इसमें डूब जाते हैं, तो मेरे जैसा परमाणु एक शुद्र जीव कैसे भागवत को समझ सकेगा, कैसे उसके अर्थ को जीवन में हृदयस्थ कर पाएगा। यद्यपि श्रीधर स्वामी का यह दैन्य है, लेकिन हम लोगों के लिए यह सत्य है। वास्तव में पुनात इतिम अर्थम, शास्त्र कहता है कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मति को निर्मल करने के लिए और भगवान और गुरुजन परंपरा वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भागवतम सुनना है, पढ़ना है, लेकिन हमेशा सदैव गुरुजनों के, आचार्यों के विनम्र शरणागत भाव से, तभी इनको हम ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा दुर्लभम एव। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, एतद् दुर्लभम इदम् प्रार्थम इति एतद्। ये जो शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रचेताओं के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की, ये प्रार्थना का ये स्तोत्र जो ये जो सारे श्लोक है, ये मेरे द्वारा जो गाय उच्चारण किए जा रहे हैं, दुर्लभम इति, बहुत दुर्लभ है उसका श्रवण कीर्तन मनन चिंतन, तो फिर हम जैसे सामान्य लोगों के लिए क्या कहना। लेकिन प्रसंग की धारा में जब हम अनुदिनम सेव्यमाणो, जब प्रतिदिन वैष्णव से सुनते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो रस, वो ज्ञान, वो भाव हृदयस्थ होने लगता है। तो प्रचेतागण अपने आप में बहुत ही भक्ति में, श्रद्धा में, हृदय में आगे थे, इसलिए भगवान शिव स्वतः उनके सामने प्रकट हुए और भगवान विष्णु की, कृष्ण की महिमा को गा रहे हैं। भागवत के प्रसिद्ध गीतों में रुद्र गीत कहा जाता है इनको, चतुष्कंद का यही सार है रुद्र गीत। यद्यपि ध्रुव महाराज के वंशजों का चरित्र मैत्रेय जी सुना रहे हैं, लेकिन भगवान शिव के मुख से निकला यह स्तोत्र वैष्णवों के लिए परम उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि इसमें भगवान के स्वरूप, तत्व, लीला, धाम पूर्ण रूप से वर्णन है, और मुख्य रूप से भगवान के ऐश्वर्यों का, भगवान की शक्तियों का। तो इसको सुनने पढ़ने से भगवान की महिमा प्रकट होती है और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा जागृत होती है। तो भगवान शिव आगे के श्लोकों में भगवान के नित्य सौंदर्य स्वरूप का वर्णन किए। स्निग्धम प्रावीणम आप सुने होंगे आगे के पूर्वोक्त श्लोकों में, 47 47 से लेकर 50, चार या पांच छह श्लोकों में भगवान के सच्चिदानंद विग्रह का वर्णन शिवजी ने अपने शब्दों में किया, और अद्भुत सौंदर्य माधुरी है कृष्ण की। प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ शब्दों के अर्थ भी तात्पर्य में प्रस्तुत किए कि भगवान की वली वल्गुदरम च, भगवान जैसे नाभि बड़ी सुंदर, जिसमें पूरा विश्व समाहित होना चाहता है, जहां से प्रकट हुआ है, बहुत सुंदर भाव दिया है। और वैष्णव लोग समझाते हैं कि जैसे यमुना जी में भंवर पड़ती है ना, तो ऐसे ही भगवान की नाभि में भी, और जब भगवान श्वास लेते हैं तो रेखाएं बन जाती है, तो सौंदर्य की सीमा से पार चला जाता है भगवान का रूप। तो ये रूप माधुरी का वर्णन संक्षेप में, सार रूप में, उनके श्रृंगार का, उनके आयुधों का, उनके वस्त्र अलंकार का और उनके प्रत्येक अंग का वर्णन शिव जी ने किया आगे के श्लोकों में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में लिखते हैं कि यावत् दर्शनम न लभ्यते, जब तक भगवान के दर्शन लाभ नहीं होते, तावत् तब तक इदम रूपम, ये जो आगे रूप का वर्णन किया गया, अनु पुनः पुनः ध्येयम, बारंबार स्मरण करना चाहिए, ध्यान में, चिंतन में, मनन में भगवान के इस रूप को लाना चाहिए। किसको? साधकों को। क्यों? कोई प्रश्न करे क्यों? इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, आत्मशुद्धिम अभिप्सताम आत्मा जीवानाम। चक्रवर्ती पाठ लिखते हैं कि आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं, मन, शरीर, बुद्धि आदि, लेकिन यहां आत्म शब्द से जीव, और शुद्धिम, शुद्धि क्या? जीव तो स्वतः सच्चिदानंद का अंश है, तो शुद्ध ही है ना। मन शुद्ध करना है वासनाओं से, बुद्धि शुद्ध करनी है विषयों से, शरीर शुद्ध करना है स्नान आदि से, लेकिन आत्मा, आत्मा तो सच्चिदानंद का अंश है तो शुद्ध ही है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संसर्ग से और रजस तमस गुणों के प्रभाव से उनके चित्त में अहंकार उत्पन्न होता है, अहम मम देहाभिमान, और उनके द्वारा वो राजसिक तामसिक आदि कार्यों में लगकर कर्म बंधन में फंस जाता है। विषयासक्त देहाभिमान, इसके इस बात को सरल शब्द में कहा जाए अविद्या, अज्ञान। तो ये है आत्मा की अशुद्धि। आत्मा शुद्ध है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वो सिद्ध है कृष्ण प्रेम, आत्मा शुद्ध है, लेकिन अनादिकाल से बहिर्मुख होने के कारण, है ना, अनादि बहिर्मुख महाप्रभु कहते हैं, उनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है अविद्या के कारण, और इसके कारण वो संसारिक कर्म बंधन में उलझकर भौतिक 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहा है। ये है अशुद्धि, अविद्या का दोवन करना है, शुद्ध करना है आत्मा को, अर्थात कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा स्वरूप में लाना है, ये है आत्मशुद्धि। और आत्मशुद्धि अभिप्सताम, अभिप्सताम मतलब जो अपने आत्मा की शुद्धि की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको चाहिए एतद रूपम अनुध्येयम, इस रूप का अनु मतलब पुनः पुनः। अनु शब्द के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में, अनु शब्द का एक होता है बारंबार, है ना, और अनु शब्द का एक अर्थ होता है पीछे भी, अनुज बाद में जन्म लेने वाला, लेकिन यहां अनु मतलब बारंबार ध्यान करना है, अनुध्यनम, किस रूप का, एतद रूप, एतद अर्थ है पूर्वोक्तम, जो पहले के श्लोकों में शिव जी ने बताया जिस रूप का, इस रूप का ध्यान करना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्यान शब्द बड़ा लोक में प्रसिद्ध है और प्रिय भी है, मेडिटेशन, लोग चाहते हैं इस बात को, ध्यान ध्यान, लेकिन ध्यान में जो ध्येय विषय है भगवान, उनका अर्थ नहीं जानते हो, किसी कोरे चिंतन की बात करते हैं, आंख बंद करके बैठे रहो या किसी लाइट ज्योति स्वतः प्रकाशित होगी, क्या प्रकाशित होगी, वो थक गया है सो जाएगा, या किसी और चिंतन में वही संसारिक वस्तुओं का श्रवण कीर्तन दृश्य यही किया है तो वही तो ध्यान में आएगा। बिना श्रवण कीर्तन किए स्मरण हो नहीं सकता, आप स्मरण उसी वस्तु या विषय का कर सकते हैं जो वस्तु या विषय आपने सुना हो या देखा हो, जो आपने देखा ही नहीं, जिस विषय में सुना ही नहीं, वो तो चिंतन में कैसे आएगा, वही नहीं। आपको प्रश्न किया जाएगा, आप उस वस्तु का चिंतन कीजिए जिसके विषय में आपने न सुना हो न देखा हो, तब क्या चिंतन करेंगे, है ही नहीं कुछ। यद्यपि प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कोटेशन देते हैं भागवत से ही, ध्याना वस्तुत गतेन मनसा, 12वें स्कंद से बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, लोग गाते रहते हैं, वैष्णव जगत में प्रिय श्लोक है, कई बार प्रभुपाद जी अपने लेक्चरों में भी इसको बताए हैं कि योगी जन नित्य ध्यान करते हैं, यद्यपि ब्रह्म संहिता भी बताती है हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय से भगवान के भक्त ध्रुव महाराज को दर्शन हुए थे, और नारद जी ने भी उसी प्रकार साधना बताई थी कि गतो मधुवनम, आप मधुवन में जाइए लेकिन वहां पर यमुना या तटसुची, यमुना के पवन पवित्र तट पर आपको जाना है, स्थान बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले भगवान के इसी तरह जो शिवजी ने वर्णन किया है इसी रूप का वर्णन किए थे, और इस भगवान के सौंदर्य का, भगवान के रूप का आप चिंतन करना। तो ये है वास्तविक गुरु जो भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, और फिर जैसे हम भी प्रभुपाद जी या अन्य आचार्यों ने, हम जो हम इंद्रियवान है, भौतिक शरीर इंद्रिय जिसके पास है, और उनके लिए जो ग्राह्य विषय है भगवत रूप, तो उसी चिन्मय रूप को अर्चा के रूप में प्रकट करते हैं आचार्य लोग अपनी मंत्र साधना से, अपनी भक्ति के बल पर, ताकि जीव प्रत्यक्ष उनको देख सके, उनके रूप को। लेकिन जो इस बात को नहीं जानते वे लोग कोरे चिंतन ध्यान की बात करते हैं, और आजकल तो इसका फैशन बन चुका है, सब जगह ध्यान करो ध्यान करो, और लोग बैठते भी, वो लोग कुछ ना कुछ म्यूजिक चलाते हैं, ऐसे एसी हॉल में म्यूजिक चलाते एकदम ठंडा मधुर मधुर, और इनको थोड़ा मन से शांति मिलता है और ये सोच लेता है कि बस मैं सिद्धि पा गया। अब बाहर आते ही तुम्हारा टेंशन तो वही माया है ना। अब ब्रह्म का चिंतन करने वाले फिर विषयों में लग जाते हैं, ऐसे होगा नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। यद्यपि अर्जुन ने 12वें अध्याय में स्पष्ट पूछा है, तेषां सत्, जो आपके साधना में लगा कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान तो स्पष्ट वहां पर बताया है। योगियों की बात, ध्यान योग जो वर्णन है भगवद गीता में, प्रभुपाद जी कहते हैं गीता में ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन तो है, लेकिन इनका सार है भक्ति योग। हमारे गुरु जी बताते कि सीधा हाईवे है भक्ति योग, जितने भी योग है उससे मिलने चाहिए, नहीं तो बेकार है। अंततः हाईवे पर आना चाहिए अगर आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो, नहीं तो उसी में घूमते रहेंगे कर्म योग ज्ञान योग में। और वो तो नरोत्तम जी विशेष भांड कह दिए उसको तो, है ना, हमारे आचार्य लोग तो। तो सार साधना है भक्ति, सबे पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अदोक्षजे, ये परम धर्म है। और इसीलिए इन सारे दूसरे बातों को त्याज्य बता दिया गया है गीता के सार में या भागवत के सार में। और इसी बात को वैष्णव जगत में आचार्य बड़ी सुंदरता से बताते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि अशुद्ध है, माया के गुणों से वशीभूत है, या चैतन्य महाप्रभु जैसे महान महावदान्य अवतार और उनके संप्रदाय में आने वाले वैष्णव की कृपा नहीं है, वो जीव कभी इस बात को समझ नहीं पाएगा और उसी अहंकार अभिमान में विपरीत दिशा में जाता रहेगा। क्लेशो अधिकतर स्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेत शाम, भगवान स्पष्ट बताया है कि अधिकतर क्लेश एव, उस मार्ग में अधिकतर क्लेश ही है जो जिस बात कही जा रही है यहां पर। और भक्ति मार्ग के लिए सुसुखम, बड़ा सुखकारी आनंदकारी और अव्यय मार्ग है। तो स्पष्ट है इन बातों को कि नहीं, सार है ध्यान कर्म ज्ञान आदि नहीं, सार है भक्ति, गीता भागवत यही कहती है। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं तो कोरे चिंतन ध्यान में फंसे रहते हैं। लेकिन भागवत कितनी सुंदर बात बताता है कि एतद् रूपम् अनुध्येयम्, वो लोग क्या ध्यान करने को कहते हैं, बस ज्योति लाइट का, रूपम ध्यानम न एव तन्नाम रूप चरितानु, है ना। प्रायण रूप गोस्वामी भी सार बता है उपदेशामृत में कि भगवान के रूप की बात सर्वत्र वेदों में पुराणों में व्याप्त है और भगवान सच्चिदानंद उनका रूप है, लेकिन उसी बात को निर्गुण कहा गया है तो ये लोग उनका अर्थ लेते हैं निराकार। बस यही समस्या है आज में, आज आध्यात्मिक जगत की ये मुख्य समस्या बनी हुई है। लेकिन इसका कारण क्या है, सही व्यक्तियों से सही शास्त्र न सुनने के कारण। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में अंतिम बात बताए कि व्यक्ति स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वाणी को विनय पूर्वक सुनता है तो समझ जाता है, अगर नहीं सुनता है तब उनके लिए कोई उपाय नहीं। तो भगवान के रूप के ध्यान की बात यहां पर हो रही है और इस बात को इसी श्लोक में कर्म संदर्भ में जीव गोस्वामी में देख रहा था अभी टीका, तो बताते हैं कि एतद् ध्यानम फलम आह, इस प्रकार भगवान के रूप का चिंतन स्मरण या ध्यान किया जाए तो उसका फल क्या है, उसका फल वही ध्यान मात्र नहीं है, फल है भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होना और उनकी सेवा लीला में रखना, ये फल है। वो लोग यही समझ लेते कि भगवान का ध्यान मतलब ये हो गया, सार्थकता है। वदन्ति तत्तद् विदस्तत्वम्, ये बात है, न तो परमात्मे थी भगवान इति पूर्णता, भगवान तक जाना है ना, भगवान की लीला में प्रवेश करना है, नित्य लीला प्रविष्ट होना है और हमारे स्वरूप के अनुसार उस रस के अनुसार भगवान की सेवा में नित्य पार्षद बनना है, ये है परम सिद्धि, ये है जीवन का लक्ष्य, न तो केवल ध्यानम। जैसे रूप ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान उसी तरह हृदय में देख रहे थे, है ना, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए और आप सभी जानते हैं कि कृपया कपोले, भगवान ने उस शंख को छुआ दिया तो वेदों का पूर्ण तात्पर्य ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। अब वेदों का पूर्ण तात्पर्य प्रकट जिस भक्त के सामने हो गया है और वह स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, भूयाद अनंत अमलाशयाना, हे भगवान जो आपके अमलात्मा वैष्णव जन है उनके सानिध्य में बैठकर कृष्ण कथा में मैं मत्त रहूं बस। अब देखिए वो श्रवण की बात कर रहे हैं कि जिसको भगवान के ध्यान में सिद्धि मिल चुकी है जो भगवान के दर्शन को पा चुका है, और वो भक्त भगवान से क्या मांग रहा है कि हमें आपकी कथाओं में, आपकी कथाओं में मैं मत रहूं, आपके भक्तों के संग में, तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास। ये बात है, जो जिनको ज्ञान प्रकट, जिनको जो अज्ञान में वो तो बकेगा कुछ भी, लेकिन भागवत देखिए, जिसको ज्ञान जो भगवान को पा चुका है वो क्या मांग रहा है। तो यही सारांश हमारे सामने प्रकट होता है इस श्लोक में। तो फिर से आइए उसी लाइन में, आत्मशुद्धिम अभिप्सिताम एतद् रूपम यनुध्येयम्। जो अपने आत्मा को शुद्ध करना मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं या भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, भगवान के इस सच्चिदानंद रूप का ध्यान करें। ये तो पहली बात का अन्वय हो गया। और ध्यान करके जैसे जीव गोस्वामी टीका चालू करते हैं कि फल, इस ध्यान का फल क्या है, भक्ति योगम, यत भक्ति योगम, और भक्ति योग के द्वारा स्वधर्म अनुष्ठितताम अनुतिष्ठताम, अपने स्वधर्म में नित्य तिष्ठित होने के कारण अभयद, भगवान के अभयद का प्रभुपाद जी यहां करते हैं, भगवान के पार्षदत्व को पा जाए। इस प्रकार भगवान के भक्ति योग में अर्थात स्वधर्म में, स्वधर्म, धर्म मतलब कर्तव्य, स्व मतलब अपना निजी आत्मा का धर्म, जैसे सवे पुंसे की बात है, या तो भागवत में यमराज जी भी बताते हैं, ये तो लोकेस्मिन पुंस धर्म परस्मृत है ना, भक्ति योगो भगवती तद नाम ग्रहण आदि भी, यही परम धर्म है। चैतन्य महाप्रभु भी यही कृष्ण प्रेम को ही परम धर्म बताए, परम सिद्धि बताए, चार पुरुषार्थ को तीन समान कह दिए हैं। तो स्वधर्म, और भागवत में आप प्रथम स्कंद में ही प्रभुपाद जी ने शुद्ध गोस्वामी के श्लोकों का सार बता दिया है। जैसे वो प्रसिद्ध श्लोक है, धर्म स्वनिष्ठिताम पुंसा, है ना, यही बात मिलती है, सधर्म अनुतिष्ठताम, धर्म स्वनिष्ठिताम पुंसा, क्या है, विश्वक्सेन कथा सुय, भगवान की कथा में रति न हो तो वो तुम्हारा जो स्वधर्म है वो स्वधर्म है ही नहीं, क्योंकि जितने भी भक्ति के अलावा जो भी कर्तव्य हम वेदों के द्वारा भी माननीय करते हैं, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म हो या कर्मकांड हो, कुछ भी, वो बाह्य है, या तो वो मनोधर्म है या शारीर धर्म है, हम न मन है न शरीर है, हम आत्मा है, और आत्मा का धर्म स्वरूप क्या है, कृष्ण अरदास, कृष्ण की सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। इसके अलावा जो भी है शारीरिक धर्म या सब मानसिक धर्म, और वो टेम्पररी है, बदलते रहेंगे समय के साथ, लेकिन स्वधर्म नहीं बदलता। इसी तरह इसीलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आप वैष्णव के मुख से सुने होंगे, उनके तात्पर्य यह है कि भक्ति ही आत्मा का स्वधर्म है। इसका प्रमाण क्या है, कोई कहेगा कर्मकांड है, कोई कहेगा ध्यान है, कोई कहेगा ज्ञान है, तो कौन सा ऐसी बात है जिससे ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा का धर्म भक्ति है, न तो अन्यम, दूसरा नहीं है। क्यों, क्योंकि आत्मा जहां भी होगा वो अपने धर्म, उसको कहा जाता है जो उस वस्तु से अलग न किया जाए, है ना। जैसे अभी वो सलारी बातें लंबी है, तटस्थ और स्वरूप बताना लक्षणों की, लेकिन सारांश में सरल हिंदी में ये बात है कि आत्मा जिस स्थिति में, जिस स्थान में, जिस समय में, जहां भी हो, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को कर सकता हो, जिससे वो अलग न किया जाए, वो उनका स्वधर्म। अब आत्मा कर्म के कारण किसी देह में है, और वह देह किसी अन्य देह में है, माता के गर्भ में है ना, होता है ऐसा, कर्मेण एव, कर्म के कारण जंतु, कपिल देव कहते हैं ना कि वो तो मां के गर्भ में जाएगा। अच्छा, अभी उसमें ना उनका शरीर विकसित हुआ है, क्योंकि अभी 9 महीने में कैसे शरीर बनता है, कपिल शिरोद्वाभ्याम, 2 महीने के बाद ये सिर आता है, उसके पहले तो सिर होता ही नहीं, और आने के बाद भी बाहर निकल, 80 साल के बाद भी वो सिर चलता नहीं है, बुद्धि चलना तो चाहिए ना, आ जाता है लेकिन काम तो करता नहीं, फिर भी कितने का टॉप फ्लोर खाली ही रहता है, समझ ही नहीं पाता, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजान वा गुणान्वित, है ना, मूढ़ोयम नाभि जानाति, ज्ञान चक्षु है नहीं उनके पास, तो क्या होगा? लेकिन उस दैन्य सोचनीय निंदनीय स्थिति में भी जीव ध्यान नहीं कर सकता, कर्म नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं ज्ञान, लेकिन भक्ति कर सकता है ना। गर्भ में भी प्रहलाद महाराज ने नारद जी के मुख से भक्ति किया, और भक्ति तो इतनी सुंदर है कि अज्ञात सुकृति अगर मां के गर्भ में है और मां प्रसाद खाती है तो भक्त को प्रसाद क्या पाना। मां प्रणाम करती है उनके खाते में प्रणाम लिख दिया, माता परिक्रमा करती है मंदिर की गिरिराज जी की, वो बच्चा जानता नहीं है लेकिन उनको भक्ति हो गया। बताओ क्या वो गर्भ में ध्यान कर सकता है? क्योंकि क्या वो कर्म कर सकता है गर्भ में? बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यहां तक उस नरसिंह पुराण के श्लोक में लिखा गया है कि नरक में भी भक्ति कर सकता है। बताओ नरक में भी किया, बूढ़ी आयो धृतराष्ट्र ने लास्ट में समझा एकदम विदुर जी की कृपा से, एकदम भी विदुर जी पहले से समझा 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 समझाते, जब लास्ट में अंत में भी समझा ना तो ऐसा अंत में वर्णन है उस श्लोक में, इस भक्त ने जैसे ध्रुव जी ने बालपन में किया या इस युवानी में तो सब कर ही लेंगे अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्योंकि भक्ति स्वधर्म है और स्वधर्म का सार तो भागवत ने प्रारंभ में ही सूत जी ने बता दिया है। अत पुंभी द्विजश्रेष्ठा है ना, वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठित, जो धर्म का सार क्या है? संसिद्धि, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, यह है धर्म का सार, या तो यह है परम धर्म या यह है जीवन की सिद्धि जो गोपियों ने की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्लोक धर्म वेद धर्म सब तीन सब तिलांजलि दे दी। तो हम इस बात को सहज समझ सकते हैं कि अपने धर्म में जो अनुष्ठित है मतलब कार्यरत है वे भक्ति योग करेंगे, और उस भक्ति योग मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु नवदा भक्ति आप जानते हैं प्रहलाद महाराज की और प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये भक्ति योग, योग माने भक्ति के अंगों द्वारा भगवान से जुड़ना, और इससे क्या होगा? अभयद, उस अभय चरणारविंद का आश्रय भक्ति योग लेने से हम क्या पाए, हम अपने स्वरूप को पा जाएंगे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं या कोई शंका नहीं। और इस बात को स्वधर्म के ऊपर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वधर्म शब्द सूचित करता है कि जीवन में किसी तरह वर्णाश्रम धर्म का हम पालन करते हैं, है ना, ये भी धर्म मान लिया, जबकि गीता में भी ये बताया है भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की बात की, चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम, और उसके बाद कर्तव्य भी बताया 18वें अध्याय में, वैश्य के क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण के क्या है, ब्रह्म कर्म क्या है, सब बताया, आश्रम वर्ण सब बताया, लेकिन इतना बताने के बाद क्या कहा? सर्वधर्मान। अरे तो पहले कह दो ना सब सर्वधर्मान छोड़ना है सब, क्योंकि सब क्योंकि ना हम विप्रो न च नरपति ना वेश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोज्य निखिल परमानंद पूर्ण अमृताब्धे गोपीर भरतो पद कमलयो दास दासानुदा। हम क्या है? हमारा धर्म यह है, हम ना वो कुछ है नहीं, ब्रह्मचारी नहीं संन्यास, हाँ शारीरिक धर्म में उसको निभाना है, लेकिन अपने स्वरूप को हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि हम दासानु दास है, और वर्णाश्रम धर्म भी गौण हो जाएगा वहां पर। और इसीलिए भगवान ने आज जो कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय गीता में, और उसी बात को कह रहे कि सर्वधर्मान बाद में। तो इसीलिए वेदों के पूर्ण कंक्लूजन एसेंस तक भक्त को पहुंचना चाहिए, नहीं तो अधूरा ज्ञान विनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए समय निकालकर इन सारे शास्त्रों के अध्ययन से हमें सार को ग्रहण करना है। अंत में कुछ मिनटों में मैं प्रभुपाद जी के अंतिम तात्पर्य को प्रस्तुत करूंगा, जिन्होंने बड़ा सुंदर प्रसंग याद दिलाया है चैतन्य चरितामृत से श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के मिलन का। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि दक्षिण भारत यात्रा में आप जाएंगे गोदावरी के तट पर, विशाखा के अवतार रामानंद राय से जब उनकी भेंट होती है, और बड़ा सुंदर लीला है वह और संवाद है, हम भक्तों के लिए ग्रहणीय है, चिंतनीय मननीय है, और वहां पर प्रभु कहे श्लोक पढ़ साध्येर निर्णय, प्रभु ने कहा बताओ रामानंद राय साध्य का निर्णय करो, श्लोक बताओ। यद्यपि रामानंद राय ने कहा कि मोर मुख्य वक्ता तुम्ही, मैं तो एक बौंप पीकर हूं, बोलने वाले तो यत्न तो आप ही है, आपकी आज्ञा है इसलिए मैं कुछ प्रयास करूंगा, मेरे मुख मेरा है, वक्ता आप है क्योंकि वो स्वरूप में थे रामानंद राय। तो क्या कहा उन्होंने, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है, स्वधर्म के पालन से धर्म विष्णु भक्ति प्राप्त होगी। और इस बात को कहने के लिए श्लोक कोटेशन दिया विष्णु पुराण का, वर्णाश्रम आचरतावतम पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम, है ना। वर्णाश्रम धर्म का पालन का हेतु क्या है, विष्णु की संतुष्टि, नान्यत दूसरा कारण नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का पालन है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसका अनुवाद स्पष्ट बताया आगे, चार वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, अगर चारों वर्ण पूरा पालन किया है लेकिन कृष्ण नहीं भजता है तो रव रवे पड़ी लो क्या फायदा बताओ। एहो बाह्य आगे कहार, ये तो बाह्य है आगे कहो, तब क्या बताया, एहो प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कहार, राय कहे कृष्णार्पण साध्य सार। तो ये बाह्य है तो साध्य सार क्या है, कृष्ण के अर्पण होके कार्य करो। कोटेशन दिया, यद करोशी यज्ञासी यज्जोसी ददाति यत, कृष्ण ने बताया है। एहो बाह्य, ये भी बाह्य है, आगे कहो। तो राय कहे, क्या कहा राय रामानंद ने, कि ये भी अगर आप बाह्य बता रहे हैं तो सर्वधर्म त्याग यही शास्त्र सार। और कोटेशन दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, गीता ने बताया, कृष्ण ने बताया। और दूसरा कोटेशन दिया भागवत से, उद्धव जी के समक्ष कृष्ण 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताते हैं कि धर्मम संस्तज्य यः सर्वान् माम भजति स उत्तम, जो सभी धर्मों को त्याग कर मेरा भजन करता है वही उत्तम है। एहो बाह्य, ये भी बाह्य है, आगे कहो यार। तो ज्ञान शून्य भक्ति हय साध्य सार। और कोटेशन देते हुए कहते 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न, एहो बाह्य, ये भी बाह्य, आगे कहो। तब ब्रह्मा जी का सुंदर स्तुति बताते हुए कहते, ज्ञाने प्रसाद ज्ञाने मदोपास्य प्रसन्न, है ना प्रसाद। और बड़ी बात कहते हुए कहते, इसी बात को प्रभुपाद जी यहां पर सुंदर बताए हैं कि स्थाने स्थिताम सुधिगताम तन्वांग मनोभी, जिस स्थान में है जिस स्थिति में है वहां पर उस स्थान में रहकर भगवान श्री कृष्ण की तन वाणी मचन तीनों से उनकी कथा सुनना, उनका कीर्तन करना, उनकी भक्ति करना, और उससे क्या होगा, अजीतो अपी, जिनका नाम विश्व में अजीत के नाम से विख्यात है उस अजीत को भी ये श्रवण कीर्तन करने वाला भक्त जीतो जीत लेगा। हाँ ये हो है, ये ठीक है, फिर भी आगे कहो यार, और कुछ कहो। राय कहे, फिर भी रामानंद राय ने कहा कि ये बात सत्य है, तो प्रेम भक्ति है साध्य सार। वास्तव में प्रेम भक्ति ही साध्य सार है, और उसी प्रेम के वशीभूत होकर यही अजीत को कर्म के बांधन जो सबको बांधता है उसको माता यशोदा ने बांध दिया, गोपियों ने वश में कर लिया भक्ति से प्रेम से। ये शास्त्रों से भगवान की लीलाओं से सत्य बात सिद्धांत सामने आता है। लेकिन जो भक्त होगा, भक्त्या माम अभी, भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होंगे, क्योंकि नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान सबके सामने अपना प्रकाश नहीं था। भक्त की कृपा से भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जाता है, नहीं तो वेदेशु दुर्लभ, वेदों में भी अदुर्लभ है। और इस बात को आगे शिव जी कहेंगे कल के श्लोक में कि भगवान भक्ति के प्रेम से ही जाने जाएंगे और मिलेंगे, नहीं तो वेदों में भी दुर्लभ है, ऋषियों के भी दिले दुर्लभ है। तो इस तरह भक्ति योग ही अभय पद दे सकता है, भक्ति ही स्वधर्म है, और भक्ति से ही भगवान प्रत्यक्ष या तो भगवान की लीला में हम पार्षद बन सकते हैं। और प्रभुपाद जी की महाकरुणा अनुग्रह है कलयुग के जीवों पर कि चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य संदेश हरिनाम हरिकथा हरिप्रसाद को उदारता से विस्कम संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में बांटा है, और उनके शिष्य प्रशिष्य आज अपनी शक्ति लगाकर सारे जगत के जीवों के ऊपर यही कृपा बरसा रहे हैं। हमारा भाग्य है कि येन केन प्रकारेण इस संस्था से जुड़े हैं, और ऐसे शुद्ध शास्त्र सनातन शास्त्र गीता भागवत से जुड़े हैं, और प्रभुपाद जी की कृपा से अर्च विग्रह महाप्रसाद वैष्णव संघ भागवत कथा स्वर्ग में देवताओं को भी दुर्लभ है, ब्रह्मलोक में भी दुर्लभ है, और हमें आमंत्रण दिया जाता है कि बैठिए, प्रसाद आपके लिए रेडी है, आप सुन लीजिए, है ना। कितनी सुंदर व्यवस्था की है, और हमें इन भक्तों को चाहिए कि इनका निष्ठा से इसमें जुड़े, भक्ति में लगे रहे, और जन्म सार्थक करी कर अपना जन्म सार्थक करते हुए प्रचार में लगे रहे। और भगवान के कीर्तन को करते रहे। आज वक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव तिथि है, जो भगवान चैतन्य के महान पार्षदों में स्थान रखते हैं, मुख्य कीर्तनिया माने जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि वक्रेश्वर तुम मेरी शाखा मात्र नहीं हो, तुम मेरी एक पंख हो, तुम्हारे जैसी और एक पंख मिल जाए ना चैतन्य भागवत तो मैं ऊपरी सात लोकों में देवताओं के लोक में जाकर भी हरिनाम बांट दूंगा। और एक बार की कथा है कि तीन दिन तक उसी भाव में नृत्य करते रहे। जब वक्रेश्वर पंडित नाचते थे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन गान करते थे। और उन्होंने कहा है कि एक बार तो उन्होंने कहा सहस्त्र गंधर्व हमको मंगा दीजिए ताकि मैं कीर्तन करता ही रहूं, नाचता ही रहूं। रथ यात्रा बहुत सुंदर मीरा रोड में उत्सव आ रहा है जगन्नाथ जी की, और उस रथ यात्रा में भी आप जानते हैं सभी भक्त, महाप्रभु ने सात मंडलियां बनाई, उसमें वक्रेश्वर जी भी एक मंडली के मुख्य नर्तनिया थे, है ना, कीर्तनिया थे। तो ऐसे महान आचार्य का आज आविर्भाव है, उनके चरणों भी में भी हम कृष्ण भक्ति की कामना, कीर्तन में बल की प्रार्थना कर सकते हैं। और वैष्णव सेवा से छड़िया, वैष्णव सेवा तो यही है, उनके मुख से सुनना, उनके आज्ञा का पालन करना। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात वक्रेश्वर पंडित के जीवन से पता चलती है कि देवानंद पंडित जो भागवत अर्थ वेत्ता थे, लेकिन फिर भी ज्ञान अहंकार से श्रीवास का अपराध किए थे। लेकिन ये न केन प्रकार न कुछ दिन उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की सेवा कर दी थी, उनके घर में उनको रुकना पड़ा था, और उस सेवा के चलते महाप्रभु ने उसको उसे प्रेम भक्ति दान दिया था। तो बराह पुराण का श्लोक जानते हैं ना आप सभी, सिद्धिर भवति वा नैति संशय अच्युत सेवी नाम। अच्युत की सेवा करने से सिद्धि मिलेगी, पूरा वेद जगत ये कहता है, शास्त्र कहता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें डाउट कर सकते हो, लेकिन तद भक्ता नाम, लेकिन उस अच्युत कृष्ण के भक्तों की अगर आप सेवा करते हो तो नस्तु संशय परिचरितात्मना, तो कोई टेंशन, क्योंकि तदिया नाम है ना, शिव जी बताया है ना कि भक्तों की सेवा में, भक्तों की सेवा भक्ति में सबसे, कृष्ण की सेवा से भी उनके भक्तों की सेवा। तो देवानंद पंडित से अज्ञात में हो गई थी, फिर भी महाप्रभु ने उन्हें प्रेम भक्ति और भागवत का सुंदर ज्ञान दिया। चार वेद दधि भागवत नवनीत, ये सब महाप्रभु ने देवानंद के सामने बोला है। मथिले न शुक खाई ले न परीक्षित, तो भागवत के अर्थ को, भक्ति सार को देवानंद को दिया उन्होंने। क्यों? वो तो अपराध किए थे, अहंकारी थे, फिर भी क्योंकि उन्होंने एक ही गुण देखा महाप्रभु ने कि वो वक्रेश्वर पंडित की सेवा किया था। तो अगर हम वैष्णव सेवा करते हैं सीनियरों की, भक्तों की, तो इस गुण के चलते हम परंपरा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और सेवा क्या है उस परंपरा की, गुरुजनों की, उनके मुख से सुनना शास्त्रों को, उन सिद्धांतों को जीवन में पालन करना, और उनके बताए हुए रास्तों से फिर प्रचार करना, तो इससे हम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव जी के इन वचनों को मैं तो क्या बता सकता हूं इतना, लेकिन अपने आप में प्रकट दिख रहे हैं कि भक्ति योग ही अभय पथ है, विष्णु पार्षदत्व प्राप्त होता है, और यही हमारा सद्धर्म है, और उनका श्रवण कीर्तन करना यही मूल, श्रवण कीर्तन जले करये सिंचन, बस यही सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। धन्यवाद आप सभी वैष्णवों का, और मुख्य रूप से मैं राधारास बिहारी मैनेजमेंट का, और आज का क्लास इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु का था, लेकिन उन्होंने कृपा करके हमें दिया कुछ रास बिहारी की भागवत की सेवा करने के लिए। ऐसे रास बिहारी में मुझे याद आ रहा है, मैं 12-13 साल हो गए यहाँ पर ही हमारी दीक्षा हुई थी, और मैं बहुत सुना हूँ रास बिहारी से, भक्तों से भी। और हम मीरा रोड गिरधारी मंदिर में सेवा करते हैं, और अभी हम नया भावनगर में प्रोजेक्ट चालू किए हैं इस्कॉन का, तो वहां पर 2 साल से हम प्रचार करते हैं, और अभी जगह भी मिलने वाला है, और बड़ा प्रभुपाद जी की कृपा रही, आप वैष्णव के अनुग्रह से हम भगवान श्री राधा कृष्ण सीताराम गौर नितय का सुंदर विग्रह और मंदिर स्थापन करने का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और मुझे याद आ रहा था कल पुरुषोत्तम प्रभु ने फोन किया हमको कि आप आइए रास बिहारी में कुछ बोलिए, बोला हम तो सुनने भी लायक भी नहीं है, बोलना कहाँ है, सुनना चाहिए, लेकिन बोले नहीं पहली बार हम दे रहे हैं इस रास बिहारी के प्रांगण में, उनके चरणों में कुछ गलती अपराध हो गया हो तो क्षमा के भाव से मैं करता हूं। और याद आ रहा था महाप्रभु का वाक्य, हे न प्रभु धन्य जिन छाड़े निज जन कालिदास के प्रति महाप्रभु कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भक्त भगवान को भूल जाता है, छोड़ देता है, चला जाता है, लेकिन भगवान धन्य है कि अपने भक्त को न छोड़ते हैं, न भूलते हैं, न आने जाने देते, लाते हैं पकड़कर। तो इसी तरह उनके चरणों में फिर से लाए। मैं कई बार बंबई आता हूं, लेकिन मीरा रोड में गिरधारी के जगन्नाथ के दर्शन से ही संतुष्ट रहता हूं। लेकिन आज सब भक्तों का दर्शन हुआ, रास बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी गौरनीता और आप सभी भक्तों का, तो मैं आज धन्य मानता हूं अपने आप को। और आप भक्तों से क्षमा चाहता हूं कि आप प्रभु जी की वाणी से अतिरिक्त और मुझ जैसे मूर्ख से कुछ सुनना पड़ा आप लोगों को। और प्रश्न उत्तरी के लिए समय नहीं दिया मैंने, क्योंकि वक्रेश्वर पंडित के बारे में 5 मिनट मैंने उसी में बता दिया। और कुछ प्रश्न है तो आप किसी भक्त से पूछ सकते हैं इस श्लोक के विषय में, मैंने जो कहा उसमें प्रश्न है तो आप हमसे अभी बाद में भी पूछ सकते हैं, अगर जानते हैं तो जरूर बताएंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरि ललिता विशाखा की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की, कलिपवान अवतार श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद की, निदाय गौर प्रेमानंदे।